क्वेश्चन, भारत में संविधान संशोधन प्रक्रिया का वर्णन करें। आंसर, संविधान के अनुच्छेद 368 भाग 20 में संविधान संशोधन प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। भारतीय संविधान में तीन प्रकार से संशोधन किया जा सकता है। पहला, साधारण बहुमत। संविधान में कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं जिन्हें संसद साधारण बहुमत से संशोधित कर सकती है और संसद द्वारा इस प्रकार किए गए संशोधन को संविधान संशोधन नहीं माना जाता। उदाहरणार्थ, राज्यों के नामों तथा सीमाओं में परिवर्तन करने, राज्यों के क्षेत्र को कम करने या वृद्धि करने, राज्यों में विधान परिषदों को गठित करने या समाप्त करने, अनुसूचित दो में जिसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल, उच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में वृद्धि या कमी करने आदि के लिए किए जाने वाले संशोधन साधारण बहुमत से किए जाते हैं, अनुच्छेद 3 या अनुच्छेद 169 एवं अनुसूचित 2 में कहा गया है। ऐसा संशोधन करने के लिए कोई विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है और एक सदन द्वारा पारित किए जाने पर उस विधेयक को दूसरे सदन को भेजा जाता है। दूसरे सदन द्वारा विधेयक को पारित करने पर उसे राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा जाता है और राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद प्राप्त कर लेने पर विधेयक अधिनियम का रूप ले लेता है। दूसरा, विशेष बहुमत द्वारा संशोधन। इसके अंतर्गत संविधान की वे व्यवस्थाएं आती हैं जिनमें संसद के विशिष्ट बहुमत द्वारा ही संशोधन किया जा सकता है। संविधान के ऐसे संशोधन का विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है। यदि संसद का वह सदन कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों की 2/3 बहुमत से उस विधेयक को पारित कर दे तो वह दूसरे सदन में भेज दिया जाता है और उस सदन में इसी प्रकार पारित होने के बाद वह राष्ट्रपति को अनुमति से संविधान का अंग बन जाता है। मौलिक अधिकार डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी तथा संविधान की अन्य अनेक व्यवस्थाएं इसी के अंतर्गत आती हैं। तीसरा, संसद के विशिष्ट बहुमत और राज्य के विधान मंडलों के अनुमोदन से संशोधन की प्रक्रिया। इस वर्ग में संशोधन की वे व्यवस्थाएं आती हैं जिनमें संशोधन के लिए संसद के विशिष्ट बहुमत अर्थात संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल बहुमत तथा कम से कम 50% राज्यों के विधानमंडल का अनुसूचित अनुसमर्थन आवश्यक है। निम्न उपबंधों के संशोधन के लिए विशेष बहुमत और राज्यों की अनुसमर्थन आवश्यक है। राष्ट्रपति का निर्वाचन, अनुच्छेद 54-55 एवं निर्वाचन की पद्धति। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, अनुच्छेद 73। राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, अनुच्छेद 162। संघीय तथा राज्य न्यायपालिका, अनुच्छेद 124 से 147, अनुच्छेद 214, 231, 241। संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विवरण, अनुच्छेद 245 से 255। संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व, अनुसूचित 4। सातवीं अनुसूची की किसी सूची में संसद की संविधान संशोधन की शक्ति। संसद की संविधान संशोधन की शक्ति असीमित नहीं है। संसद को इस शक्ति पर यह निर्बंधन लगाया गया है कि संसद संविधान में संशोधन करके उसके मूल ढांचे को नष्ट नहीं कर सकती है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, 1973। संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान संविधान संशोधन के लिए नहीं है। 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि कोई संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होकर राष्ट्रपति के समक्ष उनकी अनुमति के लिए रखा जाए तो इन्हें उस पर अनुमति दे देनी चाहिए। प्रमुख संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन को अर्ध संविधान भी कहा जाता है। इसकी मूल विशेषताएं, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम अब तक पारित सभी संशोधनों में सबसे विस्तृत थी, इसलिए इस संविधान संशोधन को अर्ध संविधान भी कहते हैं। इसके द्वारा संविधान में 2 नए संविधान अध्याय, 4 को और नए अनुच्छेद 39 को 43 को आदि। प्रस्तावना। इस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 3 नए शब्दों, पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष समाजवादी तथा राष्ट्र की अखंडता को जोड़ा गया है। ये धारणाएं संविधान में पहले से ही निहित थी, प्रस्तुत संशोधन द्वारा उन्हें स्पष्ट कर दिया गया है। दूसरा, नीति निर्देशक तत्व। इस संशोधन द्वारा 3 नए नीति निर्देशक तत्वों को संविधान में शामिल किया गया है। पहला, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, 39 को। दूसरा, उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना, अनुच्छेद 43 को। तीसरा, पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा, अनुच्छेद 48 को। इसके द्वारा अनुच्छेद 39(च) में भी संशोधन किया गया है ताकि बालकों के स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं तथा उनको शोषण से बचाने तथा नैतिक आर्थिक परित्याग के मामले में राज्य रचनात्मक भूमिका निभा सके। तीसरा, मूल कर्तव्य। इसके द्वारा भाग 4 को जोड़ा गया है जिसमें नागरिकों के 10 मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं, यह 51 क के अंतर्गत। चौथा, संसद, कार्यपालिका और विधानमंडल। अनुच्छेद 55 में संशोधित करके ये स्पष्ट कर दिया गया है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में स्थानों का आवंटन, संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों का विस्तार, ST के लिए स्थानों का आरक्षण आदि के प्रयोजन के लिए जनसंख्या से तात्पर्य सन 1971 में की गई जनगणना पर आधारित जनसंख्या है और सन 2000 तक वैसे ही रहेगी। इसके अनुसार लोकसभा से संबंधित अनुच्छेद 55 लोकसभा में SC एवं ST जातियों के लिए स्थान के आरक्षण के संबंध में अनुच्छेद 330 एवं 332 में संशोधन किया गया है। अनुच्छेद 74 में संशोधन कर यह स्पष्ट कर दिया गया है कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य होगा। इस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 105(3) और अनुच्छेद 194(3) में संशोधन किया गया था जो यह उपबंधित करता था कि संसद और विधानमंडलों के प्रत्येक सदन की वही शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां होंगी जिन्हें संसद समय समय पर विकसित करे। लोकसभा तथा विधानसभाओं के कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि की गई। 5, न्यायपालिका। इस क्षेत्र में संशोधन अधिनियम ने 6 नए अनुच्छेद 32 को, 131 को, 139 को, 144 को, 22, 226 को, 228 को जोड़े तथा 5 अनुच्छेद 145, 225, 226, 227, 228 में संशोधन किए थे। उच्चतम न्यायालय। अनुच्छेद 139 को उच्चतम न्यायालय को महत्वपूर्ण मामलों को उच्च न्यायालय से अपने पास वापस मांगने की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 131 क के अधीन केवल उन मामलों को उच्च न्यायालयों से मंगाया जा सकता था जिनमें केंद्रीय विधि या केंद्रीय एवं राज्य दोनों विधियों से संबंधित प्रश्न अंतर्ग्रस्त है, जबकि अनुच्छेद 139 क के अधीन उन मामलों को उच्च न्यायालयों से मंगाया जा सकता है जिसमें व्यापक महत्व का प्रश्न अंतर्ग्रस्त है। इस अनुच्छेद का खंड 2 उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति प्रदान करता है कि यदि वह न्याय के लिए उचित समझता है तो उच्च न्यायालय में लंबित या अपीलीय वाद को किसी अन्य या उच्च न्यायालय को अंतरित कर सकता है। अनुच्छेद 32 को, 31, 131 को, 144 को 43वें संशोधन द्वारा 1977 में निराशित कर दिया गया है। उच्च न्यायालय। मूल उच्च न्यायालय मूल अनुच्छेद 226 के स्थान पर नया अनुच्छेद रखा गया था जो उच्च न्यायालय की अधिकारिता को कम करता था। इसके अधीन उच्च न्यायालयों को मूल अधिकारों का प्रवर्तन करने की अधिकारिता को यथावत रखा गया था। अनुच्छेद 225, 227 और 228 में संशोधन किए गए। 6, संघ राज्य संबंध। 42वें ए ने संविधान में एक नया अनुच्छेद 257 को जोड़ा था जिसके अधीन संघ सरकार को किसी राज्य में विधि और व्यवस्था की गंभीर परिस्थिति का सामना करने के लिए संघ के सशस्त्र बल या किसी अन्य बल को भेजने की शक्ति प्रदान की गई थी। इसके द्वारा संविधान की 7वीं अनुसूची को भी संशोधित किया गया और निम्न विषयों को राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया। शिक्षा, वन, नापतौल, वन जीवन एवं पक्षियों की रक्षा। 7, लोक सेवाएं। इस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 311 के उपखंड 2 में संशोधन कर लोक सेवकों की जांच के दूसरे प्रक्रम में उनके विरुद्ध आरोपित किए जाने वाले शस्त्र के विरुद्ध अभ्यावेदन के अधिकार को समाप्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 312 के अंतर्गत जिला न्यायाधीश के पद से नीचे कोई पद शामिल नहीं होगा। 8, अधिकरण। इसके द्वारा भाग 14 क एवं 2 नए अनुच्छेद 323 क, 323 ख जोड़ा गया और प्रशासनिक अधिकरण की व्यवस्था की गई। 9, आपात उपबंध। इसके द्वारा अनुच्छेद 352, 53, 56, 57, 58 और 59 में संशोधन किए गए हैं। अनुच्छेद 352 में संपूर्ण भारत के संबंध में या उसके किसी भाग में शब्दों को जोड़कर यह स्पष्ट कर दिया गया है कि आपात उद्घोषणा देश के एक भाग में भी लागू की जा सकती है। इसके पूर्व उसका प्रभाव संपूर्ण देश पर होता था। अनुच्छेद 352 में किए गए परिवर्तन के परिणाम स्वरूप अनुच्छेद 353, 58, 59 में एक नया परंतुक जोड़ा गया है। इस परंतुक द्वारा संसद को यह शक्ति दी गई है कि वह उस भाग पर भी आपात संबंधी कानून लागू कर सके जो उस राज्य से भिन्न है जिसमें आपात उद्घोषणा प्रवर्तन में है, यदि इस भाग की गतिविधियों से भारत के भाग की सुरक्षा संकट में है। अनुच्छेद 356 में 6 महीने शब्दों के स्थान पर 1 वर्ष शब्दों को रखा गया है, अर्थात अब राज्यों में राष्ट्रपति शासन की प्रारंभिक अवधि 1 वर्ष की होगी। 10वां संविधान संशोधन 42वें द्वारा अनुच्छेद 368 में 2 नए खंड 4 और खंड 5 जोड़े गए थे। अनुच्छेद 4 अनुच्छेद 368 के अधीन किए गए किसी संशोधन को किसी भी न्यायालय में इस आधार पर चुनौती नहीं दी जाएगी, वह इस अनुच्छेद द्वारा विहित प्रक्रिया के अनुसार पारित नहीं किया जाएगा। खंड 5 इस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान के उपबंधों को जोड़ते परिवर्तित करने या निरसन करने के लिए संसद की विधायी शक्ति पर कोई परिवर्तन परिसीमन नहीं होगा। संक्षेप में इस खंड का प्रभाव संसद की संविधान की शक्ति को सर्वशक्तिमान बनाना था। मिनर्ना मिल्स 1980 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने खंड 4 और 5 को इस आधार पर असंवैधानिक घोषित कर दिया है कि वह संविधान संशोधन की शक्ति को असीमित करके संविधान के आधारभूत ढांचे को नष्ट करता है। 11वां कठिनाइयां दूर करने की राष्ट्रपति की शक्ति संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में अनुच्छेद 368 के पश्चात 1 नया खंड जोड़कर राष्ट्रपति को उक्त संशोधन कार्यान्वित करने में कई कठिनाइयों को दूर करने के लिए आवश्यक आदेश जारी करने की शक्ति दी गई है। इस प्रकार के खंड की कोई आवश्यकता नहीं थी। 44th कॉन्स्टिट्यूशंस अमेंडमेंट एक्ट हिस्ट्री ऑफ रीजंस इस संशोधन अधिनियम को जनता सरकार ने कांग्रेस सरकार द्वारा आपातकाल में 42वें संविधान संशोधन द्वारा किए गए आवंटित परिवर्तनों को समाप्त करने के लिए पारित किया गया। प्रस्तुत संशोधनों अधिनियम संविधान में 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा की गई विकृतियों को दूर करने के साथ ही साथ आपात उपबंधों में भारी परिवर्तन पर इस शक्ति का कार्यपालिका द्वारा भविष्य में दुरुपयोग को भी रोकने का प्रयास करता है। यह भी एक विशद विधान है जिसमें कुल मिलाकर 49 खंड है। मूल रूप में इसमें 54 खंड थे, परंतु राज्यसभा ने कुछ खंडों को अस्वीकार कर दिया था। पहला, संसद कार्यपालिका और राज्य विधानमंडल। इस संशोधन अधिनियम ने संविधान के अनुच्छेद 83, 172 में संशोधित करके लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की अवधि को पुनः 5 वर्ष कर दिया। अनुच्छेद 103 और 172 क में संशोधन करके संसद और राज्य विधान मंडलों के सदस्यों की अयोग्य विषय का प्रश्न के मामले को पुनः 42वें संशोधन की पूर्व स्थिति में कर दिया। अनुच्छेद 118 में संशोधन किया गया है और अनुच्छेद 103(4) और 189(4) जिसे लुप्त कर दिया था पुनः प्रतिस्थापित कर दिया गया है। अनगणपूर्ति का निर्धारण संविधान द्वारा किया जाएगा। अनुच्छेद 102(1)(क) में लाभ के पद के संबंध में किया गया संशोधन रद्द कर दिया गया है और मूल अनुच्छेद प्रतिस्थापित कर दिया गया है। 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा इस संबंध में न्यायालयों को अधिकारिता छीन ली गई थी। इस संशोधन के पश्चात पुनः यह अधिकार न्यायालयों को मिल गया। इसी प्रकार अनुच्छेद 191 पहला क में जो राज्य विधानमंडल से संबंधित है संशोधित करके लाभ के पद निर्धारण के प्रश्न पर न्यायालयों को अधिकारिता प्रदान कर दी गई। इस अधिनियम के पश्चात अनुच्छेद 361 के पश्चात एक नया अनुच्छेद 361 क जोड़ा गया है। यह अनुच्छेद संसद की कार्यवाहियों के प्रकाशन को संविधान का संरक्षण प्रदान करता है। उक्त विमुक्ति राज्य विधान मंडलों के संबंध में भी लागू होगी। उक्त अधिनियम केवल संसद की कार्यवाहियों के संबंध में लागू होता था। कार्यपालिका अनुच्छेद 71 को पुनः अपने मूल रूप में कर दिया गया है और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन विवादों के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय को अधिकारिता प्रदान कर दी गई है। 42वें संशोधन इस प्रश्न पर न्यायालय की अधिकारिता को समाप्त कर दिया था। 42वें संशोधन ने अनुच्छेद 74 में संशोधन करके यह स्पष्ट कर दिया है कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य होगा। 44वें संशोधन में इस संशोधन को बनाए रखा गया है, किंतु उसमें एक नया परंतु जोड़ा है जो यह उपबंधित करता है कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल को अपनी सलाह पर पुनर्विचार करने के लिए लौटा सकता है, किंतु पुनर्विचार के पश्चात उस सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य होगा। 42वें संविधान संशोधन ने अनुच्छेद 77 और 165 में एक नया खंड 4 जोड़कर सरकार के कारोबार को चलाने के लिए निर्मित नियमों की न्यायालय के समक्ष पेश किए जाने की शक्ति को न्यायालयों से ले लिया था। 44वां संशोधन अधिनियम उपर्युक्त अनुच्छेदों से खंड 4 को लुप्त करता है और इस संबंध में 42वें संशोधन के पूर्व की स्थिति को बनाए रखता है। 42वें संशोधन अधिनियम ने अनुच्छेद 123, 213 और 239 ख में एक नया खंड 4 जोड़कर राष्ट्रपति, राज्यपाल या प्रशासक के अध्यादेश जारी करने के विषय में निर्णय को अंतिम और निश्चायक बना दिया था। 44वां संशोधन अधिनियम उपर्युक्त अनुच्छेद से खंड 4 को लुप्त कर दिया और इस संबंध में 42वें संशोधन के पूर्व की स्थिति को बनाए रखता है। दूसरा, उच्चतम और उच्च न्यायालय। 44वां CAA अनुच्छेद 132, 133 और 134 को संशोधित करता है और उच्च न्यायालयों से उच्चतम न्यायालय में अपील के मामले जो विलंब होता था उसको समाप्त करने का प्रयास करता है। अनुच्छेद 139 को, जिसे 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है, कि परिस्थितियों में उच्चतम न्यायालय को उच्च न्यायालयों से मामलों को वापस कर लेने और स्वयं निपटारा करने की शक्ति प्रदान करता है। इसे यथावत रखा गया है, किंतु इनमें संशोधन किया गया है। 44वें CAA के पूर्व उच्चतम न्यायालय ऐसा केवल महान्यायवादी के आवेदन पर ही कर सकता था। 44th CAA SC को किसी पक्षकार के आवेदन पर और स्वयं भी ऐसा करने की शक्ति प्रदान करता है। 44th CAA अनुच्छेद 217 के खंड 2 के उपखंड ग को लुप्त करता है, जिनके अधीन उच्च न्यायालयों में पारंगत विधिवेत्ता के न्यायाधीश नियुक्त करने का उपबंध किया गया था। अनुच्छेद 225 मूल रूप में उच्च न्यायालयों को राजस्व के मामले में अधिकारिता प्रदान करता था। 42वें CAA द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया था। 44th CAA न्यायालयों को राजस्व मामलों में पुनः अधिकारिता प्रदान करता है। अनुच्छेद 226 को पुनः मूल रूप में रखा गया है, किंतु इसमें अंतरिम आदेश जारी करने के उपबंध को सरल बना दिया गया है। 44th CAA द्वारा न्यायाधिकरण शब्द अनुच्छेद 227 में पुनः समाविष्ट कर दिया गया है। तीसरा, आपात उपबंध। 44th CAA द्वारा आपात उपबंधों में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं, ताकि 1975 में घटित घटनाओं की भविष्य में पुनरावृत्ति न हो सके। अनुच्छेद 352 में निम्न संशोधन किए गए हैं। ए, अनुच्छेद 352 पहला, आभ्यांतरिक अशांति पदावली के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह पदावली रखी गई है। बी, राष्ट्रपति आपात की उद्घोषणा तभी करेगा जब उसे मंत्रिमंडल का विनिश्चय लिखित रूप से संसूचित किया जाएगा, अर्थात मंत्रिमंडल की सलाह पर, केवल प्रधानमंत्री की सलाह पर नहीं, जैसा कि 1975 में किया गया था, यह अनुच्छेद 352(3) के तहत। सी, आपात उद्घोषणा का अनुमोदन 1 माह के भीतर, पहले 3 माह होता आवश्यक होगा। डी, संसद के अनुमोदन के पश्चात आपात उद्घोषणा 6 माह के लिए प्रवर्तन में रहेगी। 6 माह से अधिक अवधि के लिए उद्घोषणा का प्रवर्तन संसद के अनुमोदन पर ही किया जाएगा, खंड 5 में कहा गया। ई, आपात उद्घोषणा प्रवर्तन में नहीं रहेगी यदि लोकसभा में साधारण बहुमत से इस संबंध में संकल्प पारित कर दिया जाता है, यह अनुच्छेद 352(6) के तहत कहा गया।